अगली सुबह कमरे में हल्की सी ठंडक थी। खिड़की के पर्दों के बीच से आती धूप कमरे के फर्श पर लंबी लकीरें बना रही थी। विश्वनाथ आईने के सामने खड़ा था, पूरी तरह तैयार होने के आखिरी स्टेप में। उसने ग्रे रंग का परफेक्ट फिटिंग सूट पहना हुआ था, जिसकी हर सिलाई जैसे उसकी पर्सनालिटी को और उभार रही थी। सफेद शर्ट बिल्कुल क्रिस्प, टाई डार्क ब्लू सलीके से बंधी हुई। उसके बाल हमेशा की तरह सेट, ना ज्यादा स्टाइल ना कोई दिखावा, बस एक सधा हुआ आत्मविश्वास से भरा लुक। उसकी आंखों में वही ठहराव, वही कंट्रोल, चेहरे पर हल्की सी सख्ती, लेकिन वो सख्ती ही उसका चार्म थी। वो अपनी कलाई पर घड़ी पहनते हुए आईने में खुद को देख रहा था। हर चीज परफेक्ट, हर मूवमेंट नपातुला। तभी दरवाजा बिना नॉक के खुला। अक्षरा अंदर आई, उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान और आंखों में वही पुराना हक जताने वाला भाव। वाह विशु, वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। आज तो और भी हैंडसम लग रहे हो, कहते कहते वो उसके बिल्कुल पास आ गई और बिना किसी झिझक के उसकी बाहों में हाथ डाल दिए। तीन दिन के लिए जा रहे हो? उसने हल्के से सिर उसके कंधे पर टिकाया। मुझे मिस नहीं करोगे? लेकिन विश्वनाथ ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर खुद से अलग कर दिया। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था, अब वहां कोई नरमी नहीं थी। अक्षरा, उसकी आवाज शांत थी लेकिन सख्त, दूर रहकर भी बात हो सकती है। एक लाइन, सीधी। अक्षरा एक पल को चुप हुई, लेकिन अगले ही पल वो फिर मुस्कुरा दी, जैसे उसे फर्क ही ना पड़ा हो। अच्छा बाबा, वो उसके करीब आकर उसकी कॉलर ठीक करने लगी। कम से कम ये तो करने दो। विश्वनाथ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और खुद ही अपनी कॉलर सीधी कर ली। मैं कर सकता हूं, उसने साफ कहा, लेकिन अक्षरा जैसे मानने वालों में से नहीं थी। उसने फिर भी आगे बढ़कर हल्का सा फाइनल टच दिया, टाई को ठीक किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए गले में बाहें डाल दी। विशु, उसकी आवाज अब थोड़ी नर्म थी, तुम तीन दिन के लिए मुंबई जा रहे हो, मुझे भी साथ लेकर चलो ना, उसने थोड़ा और करीब आते हुए कहा। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा बिना किसी एक्सप्रेशन के। अक्षरा रुकने वाली नहीं थी। तुम्हारे बिना घर खाली खाली लगता है, नींद नहीं आती, खाना भी अच्छा नहीं लगता। और वो थोड़ा रुककर और करीब झुकते हुए बोली, तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। लेकिन इस बार विश्वनाथ ने उसे थोड़ा जोर से अलग किया। इनफ, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें साफ चेतावनी थी। अक्षरा के चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुई। विश्वनाथ अब नीचे झुककर अपने जूते पहनने लगा। तभी अक्षरा तुरंत आगे बढ़ी। लाओ, मैं कर देती हूं, उसने झुकते हुए कहा, लेकिन विश्वनाथ ने हाथ रोक दिया। अक्षरा, उसने सीधा उसकी तरफ देखा, मैं कर सकता हूं, उसका लहजा साफ था, कोई जगह नहीं थी बहस की। अक्षरा ने हल्का सा होंठ भींचे, फिर मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूं, उसने धीमे से कहा। विश्वनाथ ने जूते का फीता बांधते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, फिर टाइम वेस्ट मत करो, मुझे देर हो रही है, सीधा जवाब। अक्षरा अब थोड़ा चिढ़ गई थी लेकिन फिर भी उसने आखिरी कोशिश की, ले चलो ना मुझे भी। विश्वनाथ खड़ा हुआ, अपना कोट उठाते हुए बोला, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहीं रहो। उसने कोट पहना और घड़ी की तरफ देखा, बाकी सब भी तो यहीं है। अक्षरा ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मेरा होने वाला पति तो वहां होगा। उसकी आवाज में अब हल्का सा हक था और जिद भी। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड तक, फिर बिना कुछ कहे नजरें हटा ली, जैसे वो इस बातचीत को यहीं खत्म कर चुका हो। अक्षरा फिर कुछ कहने ही वाली थी लेकिन इस बार विश्वनाथ ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला और वो बाहर आ गया। हॉल में परिवार के बाकी लोग मौजूद थे, हलचल थी लेकिन माहौल में एक अपनापन भी था। तभी आर्यन तेजी से उसकी तरफ आया। पापा, उसकी आवाज में हल्की सी जल्दी थी, आपको कुछ बताना था। विश्वनाथ ने उसे देखा और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी नहीं बेटा, उसने नरमी से कहा, मुझे निकलना है। आर्यन कुछ कहना चाहता था, वो थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन पापा वो। तभी अदिति अचानक बीच में आ गई। उसने हल्के से आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे थोड़ा साइड में ले गई। धीरे उसने उसके कान में कहा, क्या बात करना चाहते हो यहां? आर्यन ने धीरे से कहा,
मैं शामली के बारे में पापा को। अदिति ने तुरंत उसे रोक दिया। अभी नहीं, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन सख्त। पापा बाहर जा रहे हैं, आने के बाद कर लेना। आर्यन थोड़ा चुप हो गया लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। तभी विश्वनाथ ने उसे फिर बुलाया और अपने पास खींचकर गले लगा लिया। ध्यान रखना अपना, उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, और सबका भी, समझे? आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। जी पापा। तभी अदिति भी आगे आई और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, पापा मुझे भी गले लगना है। विश्वनाथ के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसने उसे भी अपने पास खींच लिया। तीनों एक पल के लिए साथ खड़े थे, एक छोटा सा फैमिली मोमेंट। फिर विश्वनाथ ने दोनों को छोड़ा और आगे बढ़कर रत्ना देवी और सुषमा देवी के पास गया। उसने झुककर उनके पैर छुए। माँ मैं चलता हूँ, उसकी आवाज में सम्मान था और अपनापन भी। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। खुश रहो, ध्यान रखना। पीछे अक्षरा खड़ी थी, चुप, बस देख रही थी। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी कसक और आंखों में जलन, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। विश्वनाथ ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, बस सीधा बाहर की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला और वो घर से निकल गया। पीछे घर में सब अपनी अपनी जगह खड़े थे, लेकिन हवा में एक हल्का सा बदलाव आ चुका था और अक्षरा अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच रही थीं। शामली, उसने बहुत धीमे से नाम लिया, जैसे कोई फैसला ले रही हो। देखते हैं, उसकी आंखों में अब साफ था, ये खेल अभी शुरू हुआ है।